हरे कृष्ण। तो आप सब भक्तों का अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की ओर से प्रस्तापित श्री राम कथा के इस तृतीय दिवस में हार्दिक स्वागत करते हैं। भगवान श्री रामचंद्र की कथा संसार के सभी दुखों से मुक्त करके भगवान के चरणों में प्रेम उत्पन्न कराने वाली है। ऐसी मंगलमयी कथा का गान यहाँ पर 3 दिन से हो रहा है। अनेक भक्त श्रद्धा से इसका श्रवण कर रहे हैं। भगवत कथा का श्रवण करके ही भगवान की प्राप्ति हो सकती है। गत सत्र में हम सब ने यहाँ पर श्रवण किया देवी पार्वती और शिव जी का विवाह हुआ। बहुत सुंदर गृहस्थ जीवन बिता रहे हैं। कथा कीर्तन में भगवत भजन में इन दोनों का जीवन लगा है। एक दिन की बात देवी पार्वती भगवान शिव से जिज्ञासा करती है कि हे प्रभु, भगवान रामचंद्र इस जगत में अवतार धारण किए हैं, परंतु उस भगवान के अवतार के कारण बताइए, भगवान इस संसार में क्यों आए, ऐसी कौन सी आवश्यकता पड़ी जिससे भगवान इस जगत में आए। भगवान शिव देवी पार्वती की जिज्ञासा का उत्तर देते हुए कहते हैं, भगवान के इस संसार में आने के अनेक अनेक कारण हैं, परंतु सबसे मुख्य कारण यह था, त्रेता युग के प्रारंभ में अनेक राजा महाराजा आसुरी वृत्ति को प्राप्त हुए। असुर नहीं थे, ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, परंतु पाखंडियों का संग करके ये सारे राजा महाराजा पाखंडी हो गए थे। संगत का बहुत बड़ा असर होता है, पृथ्वी पर भार बढ़ा, साधु संत महात्माओं की तपस्या का भंग करने लगे, साधुओं का ध्यान बंद हुआ, योगियों का योग बंद हुआ, तपस्वियों की तपस्या बंद हुई और संसार में जीव हिंसा, पशु वध, अनेक प्रकार के पाप में सब लोग फंस गए और इस अतिशय धर्म की हानि होने के कारण देवी पृथ्वी इस पाप से आक्रांत दुखी हो गई। देवी पृथ्वी के ऊपर जब यह दुख आया, अपने इस दुख को लेकर देवी पृथ्वी ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा जी से प्रार्थना करती हैं कि प्रभु, आप समस्त देवताओं में ज्येष्ठ हो, श्रेष्ठ हो, मेरे ऊपर अनेक अनेक पाप हो रहे हैं, कृपया करके आप मेरे पाप को दूर कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं छोटा मोटा वरदान दे सकता हूं, परंतु इतना बड़ा कार्य मुझसे नहीं हो सकता है। देवी, आपके पाप को एकमात्र भगवान विष्णु ही दूर कर पाएंगे। उस समय गोस्वामी जी कहते हैं, 33 करोड़ देवी देवता समेत शिवजी भी वहां पर उपस्थित थे और वहां पर बहुत बड़ा प्रश्न उठा कि देवी पृथ्वी के दुख को दूर करने के लिए भगवान को प्रकट करना होगा, और भगवान को कैसे प्रकट किया जाए। कुछ लोगों ने कहा तपस्या से प्रकट करेंगे, कुछ लोगों ने कहा ध्यान करने से भगवान प्रकट होते हैं, कुछ लोगों ने कहा दान करने से भगवान प्रकट होते हैं। सब लोग अपना अपना मंतव्य देने लगे। उस समय शिवजी उस सभा में बैठे थे और शिवजी अपनी राय देते हैं, भगवान को अन्य किसी जगह पर खोजने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान इस संसार में समस्त जगह पर व्याप्त है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, भगवान हरि भगवान विष्णु इस संसार में सभी जगह पर व्याप्त है। श्रीमद् भागवत में सुध गोस्वामी कहते हैं वदंती तत्त्व विदस तत्वम, भगवान के तीन स्वरूप है, जैसे इलेक्ट्रिक सिटी के तीन फेस होते हैं वैसे एक ही भगवान के तीन स्वरूप है, ब्रह्म इति परमात्मा इति भगवान इति शब्दते। भगवान द्विभुज रूप में सगुण साकार रूप में अपने धाम में रहते हैं, वही भगवान परमात्मा के रूप में सबके हृदय में रहते हैं, और वही भगवान ब्रह्म के रूप में इस जगत के कण कण में रहते हैं। भगवान सब जगह पर हैं, सब स्थान पर एक साथ, एक देश और समस्त देश समस्त काल में उपस्थित हैं, परंतु उस भगवान को प्राप्त करने के लिए कुछ करना होगा। वो भगवान ऐसे ही नहीं मिलते हैं। भगवान यद्यपि सब जगह पर हैं, परंतु उसे प्राप्त करने के लिए कुछ करने की आवश्यकता है। जैसे किसी को पानी चाहिए, तो ब्रह्मा जी दृष्टांत देते हुए कहते हैं कि कहा जाए कि इस जमीन के 100 फुट नीचे पानी है, जमीन में खड्डा करके बोरिंग करके यदि मशीन लगाया जाए तो हम पानी निकाल सकते हैं। किसी को कहा जाए कि इस भूमि में आलू है, सब्जी है, परंतु कोई व्यक्ति कहे कि मैंने तो भूमि को खोद दिया, खड्डा कर दिया, परंतु आलू नहीं मिला। भूमि में आलू है, परंतु उस आलू को निकालने के लिए कुछ विधि है, कुछ उपाय है। आलू के बीज को डालना होगा, सिंचन करना होगा, तब जाकर भूमि से आलू प्राप्त होता है। जैसे गाय में दूध है, किसी को गाय दिया जाए और कहा जाए कि आप इस गाय से दूध ले लो, परंतु गाय को काट कर दो भाग करे और दूध को ढूंढने लगे, वह दूध प्राप्त नहीं हो सकता है। गाय में दूध है, परंतु उस दूध को प्राप्त करने के लिए योग्य विधि है, ये उफर बंद कर दो, अरे बोल ये उफर कम करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्णा। गाय में दूध है, परंतु उस दूध को निकालने के लिए कुछ विधि है। गाय को घास खिलाया जाता है और जब घास खा लेती है तो बछड़े को पास लेकर जाते हैं, वात्सल्य भाव में आकर गाय अपना सारा दूध थन में छोड़ देती है और फिर उस दूध को निकाल सकते हैं। जैसे भूमि में पानी है, परंतु उसे निकालने के लिए कुछ मेहनत है। जमीन में आलू है, परंतु उसे निकालने के लिए कुछ मेहनत करनी पड़ती है। गाय में दूध है, परंतु उसे निकालने के लिए कुछ मेहनत करनी पड़ती है। वैसे ही संसार में सभी जगह पर भगवान है, परंतु उसे प्राप्त करने के लिए कुछ मेहनत करनी पड़ती है। और वो मेहनत क्या है? शिव जी कहते हैं हरि व्यापक सर्वत्र समाना, भगवान हरि भगवान विष्णु इस संसार के कण कण में है, परंतु प्रेम से प्रकट होई में जाना, परंतु वह भगवान विष्णु एकमात्र प्रेम से प्रकट होते हैं। प्रेम के द्वारा भगवान प्रकट होते हैं, अन्यथा हम कितने भी उपाय करें, कितने भी प्रयास करें, बिना प्रेम के भगवान नहीं मिलते हैं। प्रेम किया जाए। शिव जी ने बहुत सुंदर उपाय दिया, ब्रह्मा जी को यह उपाय बहुत अच्छा लगा, और भगवान को प्रकट करेंगे प्रेम करके, परंतु प्रेम की भी कुछ विधि होती है। भगवान से प्रेम करने की विधि है नवदा भक्ति, और नवदा भक्ति के मुख्य अंग हैं श्रवण और कीर्तन। शिव जी ने कहा कि भगवान के गुणगान कीजिए, क्योंकि भगवान वहीं पर प्रकट होते हैं जहां पर भगवान का नाम लिया जाए, भगवान के गुणों का गान किया जाए। एक बार नारद जी ने भगवान विष्णु को पूछा, प्रभु आप कहां रहते हैं? तब भगवान विष्णु ने सबसे पहले ये कहा कि मैं कहां नहीं रहता हूं। ये नारद, नाहम बसामि वैकुंठे, मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूं। और योगी नाम हृदयेषु वा, मैं योगियों के हृदय में भी नहीं रहता हूं। तो कहां रहते हैं? भगवान विष्णु कहते हैं यत्र गायन्ति मदभक्ता, जहां पर मेरे भक्त मेरे नाम का मेरे गुणों का गान करते हैं, जहां पर मेरे भक्त मेरी लीला का मेरे नाम का गीत गाते हैं, उस जगह पर तत्र तिष्ठामि नारद, हे नारद मैं तुरंत प्रकट हो जाता हूं। पद्म पुराण में तो भगवान कहते हैं यदि आप सोते सोते भगवान का नाम लेते हो तो भगवान आपके बाजू में आकर बैठ जाते हैं, यदि आप बैठे बैठे भगवान का नाम लेते हो तो भगवान आपके बाजू में खड़े रह जाते हैं, यदि आप खड़े खड़े भगवान का नाम लेते हो तो भगवान आपके पास आकर नाचने लगते हैं, और यदि आप नाचते नाचते भगवान का नाम लेते हो तो वह नाचने वाले भगवान आपके हृदय में आकर बैठ जाते हैं। इसलिए अन्य सभी कार्य को छोड़कर भगवान का नाम लिया जाए, क्योंकि भगवान का नाम लिए बिना, भगवान को पुकारे बिना, भगवान की स्तुति किए बिना भगवान आएंगे नहीं। समस्त देवताओं को यह प्रस्ताव बहुत अच्छा लगा, और सभी देवता एक साथ भगवान को पुकारने लगे। वास्तव में देवताओं की यह करुण पुकार थी, समस्त देवता अपने हृदय से भगवान को पुकार रहे हैं। आइए हम भी देवताओं के साथ भगवान को पुकारें, इस कीर्तन में भाग लें। सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम
सीता राम
राम राम राम सीता राम 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 सीता राम राम राम
सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम
जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा
सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम
गाइए सभी लोग
प्रेम सीता राम राम राम
अभिगत गोतीतम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंद
सीता राम 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 सीता राम
आपका कभी नाश नहीं होता है। हे सबके हृदय में रहने वाले अंतर्यामी, आप सबके अंतर में रहते हो, सभी लोगों के बारे में जानते हो। हे सर्व व्यापक, हे आनंद कंद, आनंद स्वरूप भगवान, आप इंद्रियों से परे हो, आप परम पवित्र हो, आप माया से रहित साक्षात मुकुंद हो। हे मोक्ष प्रदान करने वाले मोक्ष दाता, हम सब आपको प्रणाम कर रहे हैं, कृपया करके आप हमारे सामने प्रकट हो जाइए।
जय ही लागी बिरागी अतु अनिरागी विगत मोह मुनि वृंद। गुणगन गावहि जयति सच्चिदानंद।
प्रभु आप इस लोक और परलोक से भोग से विरक्त हो, मोक्ष से सर्वथा छूटे हुए ज्ञानी मुनिवृंद भी अनंत गुण अनुरागी बनकर जिनका रात दिन ध्यान करते हैं, ऐसे प्रभु का को हम पुकार रहे हैं। हे प्रभु, हम सब लोग मिलकर आपको यहाँ पर देखना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपके चरणों में हम विनंती करते हैं, कृपया करके आप हमारे सामने प्रकट हो जाइए।
जय ही सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई संग सहायन दो
प्रभु। आपने किसी की भी सहायता लिए बिना इस ब्रह्मांड का निर्माण किया है, प्रभु आप ही इस ब्रह्मांड का निर्माण करते हो, आप ही इस ब्रह्मांड को चलाते हो। इस ब्रह्मांड में बहुत बड़ी मुसीबत आ पड़ी है, कृपया करके आप प्रकट होइए और हमें दर्शन दीजिए।
सो कर उधारी चिंत हमारी जानिय भगति न पो पति बरो
संसार के समस्त प्रकार के भय का नाश करने वाले हो, यहाँ तक आप जन्म मृत्यु के भय से भी सबको मुक्त करते हो। हे मुनियों के मन को आनंद देने वाले, हे सभी विपत्तियों को समूल नष्ट करने वाले, आज हम सब देवता आपके शरण में आए हैं, कृपया करके आप हमें दर्शन दीजिए।
सारद श्रुति सेशा ऋषय अशेषा जा कहूं को नहीं जाना।
राम राम सीताराम राम राम राम
राम। सभी लोग प्रेम से भगवान को पुकारिए।
राम राम सीताराम राम राम।
जय ही दीन प्यारे वेद पुकारे द्रवऊ सो श्री भगवान।
संसार के बड़े बड़े लोग भी जिस भगवान को पूरा पूरा नहीं जान सकते हैं, सरस्वती वेद शेष संपूर्ण ऋषि मुनि जिस भगवान को पहचानने में धोखा खा जाते हैं, जो माया से मुक्त हैं, ऐसे भगवान से विष्णु कृपा करके आप हमारे सामने प्रकट हो जाइए।
भव पारिधि मंदर सब विधि सुंदर, गुण मंदिर सुख पूंजा, सकल सुर परम भयातुर, नमत नाथ पर कन्या,
हे समुद्र को मतने वाले मंदराचल पर्वत स्वरूप, जब जब देवताओं ने आपको पुकारा है, जब जब आपके भक्तों ने आपको पुकारा है, आप निश्चित ही उनकी रक्षा करने के लिए उपस्थित हुए हो। हे प्रभु, आज हम सब लोग आपके शरण में आए हैं, हम सब लोग दुख से व्याकुल हैं, भयभीत हैं, कृपया करके आप हमारे सामने प्रकट हो जाए। देवताओं ने बहुत सुंदर भगवान को प्रार्थना की। अरे संसार में जब जब कोई भक्त भाव से, हृदय से, प्रेम से भगवान को पुकारते हैं, भगवान निश्चित उनके सामने प्रकट हो जाते हैं। देवताओं की इस करुण प्रकार से भगवान श्री विष्णु वहां पर प्रकट हुए। गोस्वामी जी लिखते हैं, मेघ गंभीर या गिरा, कहते हैं बिजली के समान भगवान की गंभीर वाणी वहां पर प्रकट हुई, और भगवान ने बहुत सुंदर मधुर वाणी में देवताओं को कहा, आप डरिए मत, जनी डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम ही लागी धरी हहु नर बेसा, आप चिंता मत कीजिए, मैं जानता हूं आप सब लोग यहां पर क्यों आए हो। इस पृथ्वी पर असुरों का भार बढ़ चुका है, अधर्म का प्रभाव फैलने लगा है, साधु संतों के ध्यान टूट रहे हैं, भक्तों के भजन छूट रहे हैं, मैं बहुत जल्द नर स्वरूप धारण करके, मनुष्य रूप धारण करके इस पृथ्वी पर प्रकट होऊंगा। कश्यप और अदिति ने महान तप किया है।
कश्यप अदिति महातप कीना, तीन कहूं मैं पूरब बर दीना।
कश्यप और अदिति ने महान तप किया है, और उनको मैंने वरदान दिया है कि मैं आपके पुत्र के रूप में अवतरित होऊंगा। आप सब लोग अपने अपने स्थान पर वापस लौटिए। वही कश्यप अयोध्या के राजा के रूप में, दशरथ के रूप में जन्म लिए हैं, और उनकी पत्नी अदिति कौशल्या के रूप में अयोध्या के राजा दशरथ की पत्नी के रूप में जन्म ली है। आपकी रक्षा करने के लिए बहुत जल्द राजा दशरथ के पुत्र के रूप में मैं जन्म लेने वाला हूं। आप निश्चिंत रहिए, अपने अपने स्थान पर जाइए और मेरी लीला में भाग लीजिए। इतना कह के भगवान की वाणी अप्रकट हुई, और जिस दिशा से भगवान की वाणी प्रकट हुई थी, देवताओं ने उस दिशा को प्रणाम किया। समस्त देवता निश्चित होकर अपने अपने घर पर वापस लौटे हैं, और अब यहां पर सुखदेव गोस्वामी भागवत में वर्णन करते हैं, इस सृष्टि का सर्जन करने के लिए भगवान विष्णु की नाभि से ब्रह्मा जी प्रकट हुए, और ब्रह्मा जी से ब्रह्मा जी के दाएं और बाएं अंग से मनु और शत्रुपा का जन्म हुआ। एक दिन मनु महाराज को अद्भुत छींक आई और मनु के छींकने से एक संतान उत्पन्न हुआ, जिस संतान का नाम हुआ इक्ष्वाकु। और यहां से ब्रह्मा जी के द्वारा सूर्य वंश की परंपरा प्रारंभ होती है। इस संसार में ब्रह्मा जी से दो परंपरा चली है, एक सोम वंश और एक सूर्य वंश। भगवान श्री कृष्ण का जन्म सोम वंश में हुआ और भगवान श्री रामचंद्र का जन्म सूर्य वंश में हुआ। भक्तों, भगवान कैसे वंश में जन्म लेते हैं उस वंश के बारे में जानना अत्यंत आवश्यक है। कुछ लोग सोचते हैं कि भगवान हमारा पुत्र बने या हमारा पुत्र भगवान का भक्त हो, परंतु भक्त पुत्र किसे कैसे कुल में जन्म लेते हैं, भगवान कैसे कुल में जन्म लेते हैं, ये इतिहास हमें जानने की आवश्यकता है। सूर्य वंश जिनमें राजा इक्ष्वाकु के पुत्र हुए विकुक्षी के पुरंजय के अनेना के पुत्र हुए पृत के विश्वरंदी के चंद्र के युनाश्व के शाबस्त के बृहदाश्व और बृहदश्व के पुत्र हुए कुलश्व। कुल मिलाकर 100 भाई थे, परंतु उनमें से एक ही भाई बचे और कुलाश्व के 3 पुत्र हुए दृढ़ाश्व, कपिलाश्व और भद्राश्व। उनमें दृढ़ाश्व के पुत्र हुए हरियश्व के निकुंभ के कुशाश्व के सेनजीत और सेनजीत के पुत्र हुए युवनाश्व। एक दिन की बात, युवनाश्व ने विवाह किया, बहुत समय बीत गया, परंतु युवनाश्व को संतान की प्राप्ति नहीं हुई। ऋषि मुनियों को घर पर बुलाया, बहुत सुंदर यज्ञ हुआ, गर्मी की ऋतु थी, यज्ञ चल रहा था, युवनाश्व और उनकी पत्नी उस यज्ञ में बैठी थी और घंटों भर तक वह यज्ञ चला। यज्ञ में बैठे रहने के कारण युवनाश्व को गर्मी लग गई और ब्राह्मणों को कहा कि हम कुछ समय तक कहीं घूमकर आ सकते हैं। ब्राह्मणों ने कहा कि आप जाओ और समय से वापस आ जाना। युवनाश्व और उनकी पत्नी घूमने के लिए वहां से निकल गए। यहां पर ब्राह्मणों ने यज्ञ संपन्न किया और उस यज्ञ से पुत्र उत्पन्न हो ऐसा जल प्राप्त हुआ। ब्राह्मणों ने देखा यहां पर युवनाश्व और उनकी पत्नी नहीं है। ब्राह्मणों ने वह जल उस यज्ञ हवन कुंड के बाजू में रखकर ब्राह्मण अपना कार्य करने के लिए चले गए। युवनाश्व और उनकी पत्नी कुछ देर के बाद आए। युवनाश्व को बहुत प्यास लगी थी और भक्तों, प्यास लगने के कारण तुरंत उन्होंने उस पानी को उठाकर पी लिया, क्योंकि वह पानी कोई साधारण पानी नहीं था। उस पानी में ब्राह्मणों के मंत्र अभिहित किए हुए थे। उस पानी को पीने से पुत्र की प्राप्ति होने वाली थी। ब्राह्मण जब आए, पानी ढूंढने लगे, बोले जल कहाँ है? युवनाश्व ने कहा वह जल तो मैं पी गया। ब्राह्मणों ने अफसोस करते हुए कहा, दुख की बात है युवनाश्व महाराज, हमने ये जल आपकी पत्नी के लिए तैयार किया था। जो व्यक्ति ये जल पिएगा उसके गर्भ में पुत्र की प्राप्ति होगी, परंतु भूल से आपने पी लिया, अब आपके गर्भ में पुत्र का जन्म होगा। यह है सूर्य वंश का इतिहास। और भक्तों, आश्चर्य की बात, धीरे धीरे महीने बढ़ने लगे और युवनाश्व का पेट भी बढ़ने लगा गर्भवती स्त्री की तरह, और 9 महीने तक युवनाश्व का पेट जो था पूरा पूरा बढ़ गया। और उस समय बड़े बड़े वेदों को बुलाया गया और वैद्यों ने जैसे आज के डॉक्टर ऑपरेशन करके बालक को निकालते हैं, वैसे युनाश्व के पेट को फाड़कर उस बालक को प्राप्त किया। परंतु आप सब लोग जानते हो कि जब भी किसी माता के गर्भ से बालक का जन्म होता है तो भगवान की कृपा से, भगवान की व्यवस्था से वह बालक मां के स्तन का दूध पान करता है। परंतु ये बालक तो पिता के गर्भ से उत्पन्न हुआ, अब इसे दूध कैसे पिलाया जाए? तो वहां पर बहुत बड़ा प्रश्न उठा कि इसे दूध कौन पिलाएगा, इसकी धात्री कौन बनेगी? कह दाता, इसका दाता कौन बनेगा? तब उस समय समस्त देवताओं के राजा इंद्र स्वर्ग से नीचे आए और कहा कि माम दाता, मैं इसका दाता बनूंगा। और इंद्र की उंगली में अमृत का स्त्रव होता है, इंद्र ने अपनी उंगली को उस बालक के मुंह में रखा, अमृत का पान किया और देखते देखते वह बालक बड़ा हो गया। क्योंकि बालक के जन्म के समय इंद्र ने कहा था माम दाता, मैं इसका दाता बनूंगा, इसलिए उस बालक का नाम हो गया मान दाता। इस प्रकार सूर्यवंश की परंपरा में युनाश्व के पुत्र हुए मानधाता, और मानधाता की 50 कन्या और एक पुत्र, इनकी कथा भागवत के नवम स्कंद के 6 अध्याय में बताई गई है। शौबरी नाम के ऋषि हुए जिन्होंने 60,000 वर्ष तक जल में रहकर तपस्या की, परंतु 60,000 वर्ष तक तपस्या करने के बाद भी उनका हृदय पवित्र नहीं हुआ। केवल साधारण मछली के मैथुन को देखकर वे मोहित हो गए और सोचे कि मैं मनुष्य हूं, साधु हूं, परंतु मेरे से ज्यादा आनंद तो ये मछलियां ले रही हैं। सोचा मैं भी विवाह करूंगा। और शौबरी ऋषि 60,000 वर्ष के बाद जल से निकले और मानधाता की 50 कन्या के साथ विवाह किया। मानधाता का एक पुत्र जिसका नाम पुरुकुत्स, पुरुकुत्स के त्रशदस्यु, त्रशदस्यु के अनर्यण, अनर्यण के हरियश्व, हरियश्व के अरुण, अरुण के निबंध और निबंध के पुत्र हुए त्रिशंकु। इनकी कथा भी भागवत में है, संक्षिप्त में इतना ही सुनिए। त्रिशंकु महाराज की इच्छा हुई कि मैं स्वर्ग में जाऊं, परंतु खुद कोई तपस्या नहीं किए, कोई ध्यान दान कुछ नहीं किए, अपने गुरु के पास गए और कहा कि कैसे भी करके मुझे आप स्वर्ग में भेजो। तो गुरु विश्वामित्र यहां पर तपस्या के बल पर अपने शिष्य त्रिशंकु राजा को स्वर्ग में भेजा, और सबके देखते देखते राजा त्रिशंकु उड़ते हुए स्वर्ग में गए। और स्वर्ग के देवता चिंतित हो गए, ये बिना मेहनत किए, बिना कोई दान कार्य पुण्य किए हमारे स्वर्ग में आ रहा है। तो वहां देवता लोग तपस्या में बैठ गए, उन्होंने अपने गुरु को बिठाया, आप तपस्या करो और इसको ऊपर से नीचे भेजो। विश्वामित्र नीचे से ऊपर भेज रहे हैं, वो लोग ऊपर से नीचे भेज रहे हैं। त्रिशंकु ऊपर भी नहीं पहुंचे और नीचे भी नहीं आ पाए, आकाश में लटक गए। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि आज भी ये राजा त्रिशंकु लटक रहे हैं, कोई गति नहीं हुई। त्रिशंकु के पुत्र हुए इस पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट, जिसका नाम लेते ही हृदय में सत्यता का प्रभाव छा जाता है, ऐसे राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र त्रिशंकु महाराज के पुत्र हुए, और हरिश्चंद्र के बारे में इस संसार में कौन नहीं जानता है? अद्भुत राजा जो अपनी सत्यता के प्रण पर अड़ग थे, अपने धर्म में अड़ग थे। एक दिन राजा हरिश्चंद्र को एक स्वप्न आया, और स्वप्न क्या था? मैंने यह सारी पृथ्वी विश्वामित्र को दान में दे दी, और सुबह उठकर देखे तो ऐसा कुछ नहीं था, एकमात्र छोटा सा काल्पनिक स्वप्न था। लेकिन ये तो सत्यवादी राजा थे, सोचे कि मैंने सपने में पृथ्वी दान में दे दी है तो वास्तविक में भी मुझे पृथ्वी दान में देनी होगी। भगवान से प्रार्थना करने लगे, प्रभु प्रभु यदि विश्वामित्र मेरे द्वार पर आ जाते तो मैं मेरी पृथ्वी उनको दान में दे देता। पूरी दुनिया के राजा थे, चक्रवर्ती सम्राट। और भक्तों, उसी क्षण उसी समय मुनि विश्वामित्र राजा हरिश्चंद्र के द्वार पर आए हैं। राजा हरिश्चंद्र ने हाथ में जल लिया, संकल्प किया कि हे मुनिवर, ये मेरी पृथ्वी, जहां तक मेरा राज्य है, ये सारी पृथ्वी आज मैं आपको दान में दे रहा हूं, मैं आपको भेंट कर रहा हूं। मुनि विश्वामित्र को राजा हरिश्चंद्र ने सारी पृथ्वी दान में दे दी। तब विश्वामित्र जी ने कहा कि राजन, आपने दान तो बहुत बढ़िया कर दिया है, दान देने में तो आप बहुत अच्छे रहे, अब दक्षिणा तो दो। क्योंकि भक्तों, ये ब्राह्मणों का नियम है, आप कितना भी अच्छा दान करो, लड्डू खिलाओ, भोजन खिलाओ, 56 भोग खिलाओ, परंतु जेब में 10 रुपये नहीं डालोगे तब तक खुश नहीं होंगे, दक्षिणा चाहिए। बोले, राजन आपने दान तो दे दिया परंतु दक्षिणा नहीं हुई, दक्षिणा दो। बोले, क्या चाहिए? आप मात्र आवाज करो, क्या चाहिए? बोले, ज्यादा नहीं, 10 सोना मोहर चाहिए। तुरंत राजा हरिश्चंद्र अपने सैनिकों को बुलाए, कहा, अपने धन की तिजोरी में से 10 नहीं, इस महर्षि विश्वामित्र को 100 सोना मोहर दान में दे दो। तुरंत विश्वामित्र ने कहा कि राजन, मैं तुम्हें सावधान करता हूं, तुमने ये पूरी पृथ्वी मुझे दान में दे दी है, और इस पृथ्वी से तुम धन लेकर मुझे देने जा रहे हो, एक दान दो बार करना चाहते हो? यदि तुम्हें मुझे दक्षिणा देनी है तो इस पृथ्वी से बाहर निकलो और मेहनत करके कमाकर फिर मुझे दक्षिणा प्रदान करो, इस पृथ्वी से नहीं। बड़े बड़े भक्तों के जीवन में परीक्षा होती है, ये तो सत्यता की परीक्षा थी। राजा हरिश्चंद्र तुरंत सोच लिए, काशी नाम का जो शहर है इस पृथ्वी का हिस्सा नहीं है। तुरंत राजा हरिश्चंद्र अपनी पत्नी तारामती और पुत्र रोहित को लेकर काशी नाम के क्षेत्र पर चले गए, जहां पर शिव जी का वास है। ये काशी नगरी जो है शिव जी के त्रिशूल के ऊपर बसी है, और इसका साइंटिफिकल रीजन है, वैज्ञानिक कारण है, इस पृथ्वी पर अनेकों बार भूकंप हुए परंतु काशी में आज तक भूकंप नहीं हुआ, क्योंकि काशी जो है ये इस पृथ्वी का हिस्सा नहीं है, भोलेनाथ के शिव जी के त्रिशूल पर बसा है। हरिश्चंद्र तुरंत काशी चले गए, और काशी की बाजार में राजा हरिश्चंद्र अपनी पत्नी और पुत्र को लेकर खड़े हैं, और दोनों हाथ जोड़कर सबके पांव में पड़ते हुए कहते हैं कि हे काशी के वासियों, सुन लो मेरी पुकार, मैं आया हूं, आप लोग हमें खरीद लो। एक दिन का चक्रवर्ती सम्राट राजा हरिश्चंद्र आज भिखारी बन गया है। अघट घटना पठिए सी भगवान की भक्ति शक्ति है। भक्तों, आप याद रखिए, इस जगत में करोड़पति कब रोड पर आ जाए और रोड़पति कब करोड़पति हो जाए, किसी का कोई भरोसा नहीं। सूरदास जी ने बहुत सुंदर लिखा है, सब दिन होतन एक समान। सब लोग अपने मन में इस बात को बिठा कर रखिए कि सब दिन एक समान नहीं होते। एक दिन राजा राज हरिशन, एक दिन राजा राज हरिशन, संपत्ति में रुसमान, होतन एक समान, सब दिन होतन एक समान। सब दिन एक समान नहीं होते हैं। एक दिन के राजा थे, राज दर दर भटक कर भीख मांग रहे हैं कि आप हमें खरीद लो, दुनिया का राजा है, परंतु अपनी पत्नी को बेच दिया किसी माली के वहां। अपने पुत्र को बेच दिया और खुद शमशान में खुद बिक गए, और बिककर जो भी धन आया वह सारा धन विश्वामित्र को दक्षिणा के रूप में दे दिया। यहां तक भगवान ने परीक्षा लेना बंद नहीं किया। एक दिन पुत्र रोहित बगीचे में फूल तोड़ रहा था और उस समय एक सर्प ने उसे डंस लिया, पुत्र की मृत्यु हो गई। देवी तारामती विलाप कर रही है, दुखी हो रही है। स्वयं अपने पुत्र को उठाकर शमशान में लेकर गई। मणिकर्णिका घाट जो आज भी काशी में गंगा के किनारे पर है, जहां पर राजा हरिश्चंद्र नौकरी करते थे, राजा हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी को प्रवेश नहीं दिया। तारामती ने कहा कि आपके पुत्र की मृत्यु हो गई है, इनको अंदर आने दीजिए। बोले नहीं आने दूंगा। बोले ये आपका पुत्र है, आपको दया नहीं आ रही है? बोले अभी ये मेरा पुत्र नहीं है, अभी तो मैं एक नौकर हूं, यहां पर नौकरी कर रहा हूं। बोले नाथ स्वामी आप मुझ पर इतनी तो दया कीजिए, कम से कम इस पुत्र को अंत्येष्टि संस्कार तो करने दीजिए। बोले नहीं करने दूंगा, यदि अंत्येष्टि संस्कार करना है तो उनकी कीमत चुकानी होगी, पैसे देने होंगे। बोला प्रभु मैं कहां से पैसे लाऊं, मेरे पास पैसे नहीं है। बोले तो यहां पर अंत्येष्टि क्रिया नहीं होगी, लेकर चले जाओ। रोती हुई तारामती कहती है कि दया कीजिए नाथ। राजा हरिश्चंद्र दया, बोले मेरे पास कुछ नहीं है। तब राजा हरिश्चंद्र ने कहा था, ऐसा क्यों कह रहे हो कि कुछ नहीं है, आपने अपने शरीर पर वस्त्र तो पहना है, उतार कर दे दो। उस समय तारामती ने अपने शरीर पर मात्र एक वस्त्र पहना था और अपने पुत्र की चिता जलाने के लिए तारामती अपने शरीर के उस वस्त्र को जैसे ही निकालने गई, ब्रह्मा विष्णु महेश वहां पर प्रकट हो गए और भगवान ने कह दिया बस हरिश्चंद्र बस, तुम्हारी सत्यता की परीक्षा हो गई, तुम्हारे जैसी सत्यता इस संसार में किसी की हो नहीं सकती है, वास्तव में तुम धन्य हो। और उस समय भगवान ने राजा हरिश्चंद्र को फिर से उनका राज्य वापस दे दिया। यह है सूर्य वंश की परंपरा। भक्तों जो लोग इस प्रकार से सत्यता में अड़ग रहते हैं, धर्म का निर्वाह करने में अड़ग रहते हैं, ऐसे कुल में भगवान का जन्म होता है, ऐसे कुल में, ऐसे परिवार में, ऐसे समाज में भक्त का जन्म होता है। राजा हरिश्चंद्र के पुत्र हुए रोहित, रोहित के हरित, हरित के चंप, चंप के सुदेव, सुदेव के विजय, विजय के भ्रु भरुक, भरुक के वृक और वृक के पुत्र हुए बाहुक। सूर्य वंश की परंपरा गिनाते हुए सुखदेव गोस्वामी बाहुक नाम का पुत्र हुआ और इस बाहुक की 1000 पत्नी थी। एक दिन की बात, यह बाहुक युद्ध करने के लिए गया था और वहां पर युद्ध करते करते इनकी मृत्यु हो गई। उस समय एक रानी के गर्भ में एक संतान पल रहा था। 999 रानी ने बैठकर मीटिंग किया कि यदि उस बालक का जन्म हो गया तो उनकी मां जो है राजमाता बनेगी और हम सब लोग दासी हो जाएगी, इसलिए कैसे भी करके उस बालक को जन्म नहीं देना है। बोले क्या किया जाए? तब सभी स्त्रियों ने बैठकर निर्णय किया, एक काम करते हैं उस बालक को गर्भ में ही मार देते हैं। कैसे? बोले विष युक्त भोजन खिला देंगे, गर्भ में रहा हुआ बालक मर जाएगा। और जैसा सोचा था वैसा ही किया। बाहुक की जो गर्भवती पत्नी थी उनको विष युक्त भोजन कराया, परंतु भक्तों सूर्य वंश के ऊपर भगवान की कृपा बरसती रही है और यहाँ पे कृपा बरसना बंद नहीं हुआ। बालक को यद्यपि विष खिलाया गया, गर्भ में विष डाला गया, परंतु 9 महीने के बाद वह बालक ने विष को ग्रहण नहीं किया, उस विष को हाथ में लेकर बाहर निकला। मुझे आपका विष नहीं खाना है, ये लो वापस रखो। उस विष को लेकर प्रकट हुआ, मरा नहीं। विष को संस्कृत में गर कहते हैं, गर, क्योंकि यह बालक गर के साथ उत्पन्न हुआ था, गर को साथ में लेकर जन्म लिया, इसलिए बाहु के इस पुत्र का नाम हुआ सगर। आगे चलकर ये सगर राजा हुए और राजा सगर की 2 पत्नी थी, सुमति और केशिनी। राजा सगर की सुमति नाम की पत्नी से 60,000 पुत्र जन्म लिए। कलयुग में ये सुनने से लगता है कि ये सब हुआ होगा, किसी को विश्वास नहीं होता है, लेकिन श्रीमद् भागवत प्रमाण ममलम, ये भागवत प्रमाणिक ग्रंथ है। हमारी बुद्धि मात्र केवल वर्तमान के समय को सोचती है, हमारा इतिहास जो था बहुत बृहत था। राजा सगर के 60,000 पुत्र हुए और राजा सगर ने 99 अश्वमेघ यज्ञ किए। भक्तों, इस संसार में यदि कोई व्यक्ति 100 अश्वमेघ यज्ञ कर लेता है तो वह स्वर्ग का राजा बन सकता है। और ये 99 अश्वमेघ यज्ञ कर चुके थे, केवल 1 अश्वमेघ यज्ञ बाकी था। और अश्वमेघ यज्ञ करने के लिए जिसको ये यज्ञ करना होता है उसे एक घोड़ा छोड़ना पड़ता है। वह घोड़ा पूरी दुनिया में घूमता है और जिस राजा को इसके साथ ईर्ष्या है या कुछ तकलीफ है, घोड़े को चुरा लेते हैं, ये राजा जाते हैं उसके साथ युद्ध करते हैं, घोड़े को छुड़ाते हैं। ऐसे पूरी दुनिया के साथ जब युद्ध कर लेते हैं तब जाकर वह राजा अश्वमेघ यज्ञ कर सकते हैं। 99 हो गए थे, 100 अश्वमेघ घोड़े को छोड़ा, परंतु घोड़ा वापस नहीं आया। तब राजा सगर ने अपने 60,000 पुत्रों को भेजा, जाओ और कैसे भी करके उस घोड़े को लेकर आओ। घोड़े को लेने के लिए 60,000 पुत्र गए, इस पृथ्वी पर ढूंढा, कहीं पर वह घोड़ा नहीं मिला। तो सोचने लगी, ये कहाँ है, पृथ्वी में है या पाताल में है? ये 60,000 पुत्र इस पृथ्वी को खोदने लगे और खोदते खोदते इस पृथ्वी पर बहुत बड़ा गड्ढा कर दिया। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, आगे चलकर इस सगर के 60,000 पुत्र ने जो खड्डा किया, वहां उस खड्डे में पानी भरा, और उस खड्डे में पानी भरा तब उस खड्डे का नाम हुआ सागर। सगर के पुत्रों के द्वारा सागर का निर्माण हुआ। अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, ये जो भी सागर है ये सगर के पुत्रों के द्वारा हुआ है। घोड़ा नहीं मिला, अंत में घूमते घूमते गंगा सागर पहुंचे। भगवान कपिल देव वहां पर ध्यान कर रहे थे और इंद्र ने उस घोड़े को चुराकर भगवान कपिल देव के आश्रम में बांध दिया था। 60,000 पुत्र पहुंचे, घोड़े को तो ले लिया, परंतु उन्होंने मन में भगवान का अपराध किया। बोले, ये साधु होकर भी घोड़ा चुरा कर बैठा है। यद्यपि भगवान ने कुछ नहीं किया था, इंद्र ने किया था, परंतु भगवान और भक्तों का अपराध आपने कल सुना ना। सती जी ने कितना सुंदर प्रवचन किया, इस संसार में वैष्णव अपराध जो है सबसे बड़ा अपराध है, सबसे बड़ा पाप है। भगवान और भगवान के भक्त दोनों का रोल, भगवान कपिल देव का इन्होंने अपराध किया, और अपराध करते ही 60,000 पुत्र उसी जगह पर जलकर राख हो गए, मर गए। राजा सगर को पता चला मेरे 60,000 पुत्र मर गए, अब अश्वमेघ यज्ञ तो बाजू में रह गया, अब ये पुत्र की का उद्धार कैसे हो, ये प्रश्न खड़ा हुआ। राजा सगर तो अपने पुत्र का उद्धार नहीं कर पाए, परंतु दूसरी केशिनी नाम की जो पत्नी थी उनका एक पुत्र हुआ जिसका नाम था असमंजस। राजा सगर का यह पुत्र असमंजस अपने भाइयों का उद्धार करने के लिए बहुत मेहनत की, तपस्या की, परंतु ये भी कुछ नहीं कर पाए। असमंजस के पुत्र हुए अंशुमान। ये अंशुमान ने अपने पितरों का दादाओं का उद्धार करने के लिए भगवान कपिल देव के आश्रम में जाकर बहुत सुंदर स्तुति की, हे प्रभु आपके अपराध के कारण हमारे दादाओं की मृत्यु हो गई है, अब उसका उद्धार कैसे हो आप मुझे मार्ग बताइए। तब भगवान कपिल देव स्तुति से प्रसन्न होकर अंशुमान से कहे कि वत्स तुम्हारे 60,000 दादा पितरों का उद्धार हो सकता है, कब? जब गंगा नदी में उनके अस्थि को डाला जाए, उनके अस्थि को गंगा में विसर्जन करने से सबका उद्धार हो जाएगा। परंतु भक्तों दुख की बात यह थी, उस समय गंगा इस पृथ्वी पर नहीं आई थी, उस समय गंगा ब्रह्म लोक तक आ चुकी थी, पृथ्वी पर नहीं थी। भगवान वामन ने, भगवान विष्णु ने जब वामन अवतार धारण किया और 2 कदम में पूरा ब्रह्मांड नाप लिया, 1 कदम से पृथ्वी के नीचे अतल वितल तलातल पाताल रसातल को नापा और दूसरे कदम से जनलोक मरलोक स्वर्गलोक तपलोक ब्रह्मलोक, जब भगवान का चरण ब्रह्मलोक तक पहुंचा तब भगवान का अंगूठा जो था इस ब्रह्मांड का जो ऊपर कवर है उस कवर में लगा और उसके ऊपर जो शीर सागर का जल है उस कवर को तोड़कर नीचे आ गया। आध्यात्मिक जगत के उस दिव्य जल ब्रह्मांड के उस कवर में छिद्र हुआ और नीचे आया। ब्रह्मा जी ने उस जल को अपने कमंडल में ब्रह्मलोक में धारण कर लिया, क्योंकि सबसे ऊपर का लोक ब्रह्मलोक है, गंगा ब्रह्मलोक तक आ चुकी थी। अब गंगा को इस पृथ्वी पर लाने के लिए अंशुमान ने बहुत तपस्या की परंतु नहीं ला पाए। तब अंशुमान के इसी सूर्यवंश की परंपरा में अंशुमान के पुत्र हुए दिलीप। राजा दिलीप ने भी बहुत बहुत तपस्या की परंतु वे भी ब्रह्मलोक से गंगा को इस पृथ्वी पर नहीं ला पाए। तब जाकर राजा दिलीप के पुत्र हुए भगीरथ, और भगीरथ जी ने बहुत बहुत स्तुति और तपस्या की और अपनी तपस्या से गंगा को प्रकट किया। गंगा ने भगीरथ जी को दर्शन दिया और भगीरथ जी ने प्रार्थना की कि हे देवी कृपया करके आप ब्रह्मलोक से इस पृथ्वी पर आइए और हमारे पितरों का उद्धार कीजिए। तब गंगा ने 2 शर्त रखी, बोले मैं ब्रह्मलोक से पृथ्वी लोक में आऊंगी परंतु मेरी पहली शर्त यह है, मेरी प्रथम शर्त यह है कि ब्रह्मलोक से मैं गिरूंगी तो मेरा वेग जो है प्रचंड होगा और उस वेग को यदि कोई धारण नहीं करेगा तो मैं पाताल में चली जाऊंगी, मैं पृथ्वी पर नहीं टिकूंगी। तो मेरी धारा को रोकने वाला, मेरे वेग को कम करने वाला कोई चाहिए। तुरंत भगीरथ जी भगवान शिव के पास गए और शिव जी ने कहा कोई बात नहीं, भगवान के चरणों से निकले हुए जल को तो मैं मेरे मस्तक पर धारण करूंगा। शिव जी ने कह दिया गंगा को कहिए स्वागत है मेरी जटा में आए और मेरी जटा से मैं भेजूंगा। 1 शर्त तो पूर्ण हुई, गंगा की दूसरी शर्त थी मैं पृथ्वी लोक में आऊंगी परंतु जब मैं पृथ्वी लोक पर आऊंगी तो लाखों लाखों लोग मुझ में स्नान करेंगे, अनेक पापी आएंगे मुझ में स्नान करेंगे और अपना पाप छोड़कर चले जाएंगे और मैं तो पापों से भर जाऊंगी, फिर मेरे पाप को दूर करने वाला कौन होगा? बात भी सत्य है। गंगा में कोई जाता है स्नान करता है तो व्यक्ति परम पवित्र हो जाता है, समस्त पापों से मुक्त हो जाता है, सारे पाप गंगा ले लेती है। तो सबके पाप हरते 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 एक दिन गंगा में इतना पाप बढ़ जाएगा उस पाप को दूर कौन करेगा, गंगा की यह शरत। तब भगीरथ जी ने बहुत सुंदर बात बताई कि हे माते आप में अनेकों पापी आएंगे, स्नान करेंगे, पाप करके चले जाएंगे, पाप छोड़कर चले जाएंगे, परंतु आप में स्नान करने के लिए कभी कभी भगवान विष्णु के भक्त वैष्णव भी आएंगे और भगवान विष्णु के भक्त वैष्णव जब आप में स्नान करेंगे आपके सारे पाप को हर कर चले जाएंगे, हे गंगा जी आपको पवित्र कर देंगे, साधो न्यास्ति शांत ब्रह्म निष्ठा लोकपात का हरंत्य अगम ते सत्संगा ते श्वास्ते हर भित्यरी। हरंति आपके सभी पाप को भक्त हर लेंगे। ये है भक्तों की महिमा है। हमारे एक संत ने बहुत सुंदर गाया है, गंगार परश हैल पश्चात पावन। यदि आपको पवित्र होना है तो यहां से हरिद्वार जाकर गंगा में स्नान करना होगा, और श्रद्धा से स्नान करते हो तब पवित्र हो सकते हो। परंतु आप वैष्णवों का, भक्तों का दर्शन कर लो, भक्तों के दर्शन करने मात्र से हृदय में पवित्रता आ जाती है, व्यक्ति परम पवित्र बन जाता है। दर्शन पवित्र करो यही तुम्हारा गुण। तो इस प्रकार भगीरथ जी गंगा को इस पृथ्वी पर लाए और अपने पितरों का उद्धार किया। सूर्य वंश की परंपरा में भगीरथ के पुत्र हुए श्रुत, श्रुत के नाभ, नाभ के सिंधुदीप, सिंधुदीप के आयुतायु, आयुतायु के पूर्ण पुत्र हुए ऋतुपर्ण, ऋतुपर्ण के सर्वकाम, सर्वकाम के सुदास, सुदास के सौदास, अश्मक, मूलक, एडविड, खटवांग, दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के पुत्र हुए रघु, राजा रघु के पुत्र हुए अज, और अज के पुत्र हुए दशरथ।